क्या कश्मीर के भूमि सुधार हिंदू विरोधी थे? कश्मीर के आर्टिकल 370 के विरोध का इतिहास इतना सिंपल नहीं है। इसकी शुरुआत शेख अब्दुल्ला के राज्य में भूमि सुधार लागू करने के बाद हुई। इन सुधारों के कारण कश्मीरी पंडितों के हाथ से काफी जमीन गई और उनमें पहली बार अलगाव का एहसास पनपना शुरू हुआ। अशोक कुमार पांडे की रिपोर्ट। कश्मीर समस्या को अक्सर हिंदू मुस्लिम तनाव की तरह ही पेश किया जाता है। अनुच्छेद 370 के विरोध को भी देशभक्ति और अखंडता के मुहावरों में समझने का ही चलन रहा है। पिछले साल 5 अगस्त को जब 370 हटाया गया तो देश भर में इसे ऐसे पेश किया गया मानो इस एक फैसले से जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया है और अब तक वो भारत का हिस्सा था ही नहीं। लेकिन अनुच्छेद 370 के विरोध के इतिहास की पड़ताल करें तो हम पाते हैं कि भारत की संविधान सभा में जब इसे पेश किया गया तो मौलाना हसरत मोहानी के अलावा किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। इसे भारत से कश्मीर को जोड़ने वाला बताया गया था। यहां तक कि तब कांग्रेस के मंत्री के रूप में संविधान सभा के सदस्य रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी इस बहस में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिलती। फिर ऐसा क्या था कि अगले 4 साल के भीतर न केवल इस अनुच्छेद को अलगाववादी बताए जाने लगा बल्कि इसके खिलाफ शुरू हुए आंदोलनों को पूरी तरह से सांप्रदायिक बना दिया गया। इसने घाटी के भीतर और बाहर अनेक तरह के सामाजिक तनावों को तो जन्म दिया ही, राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को एक सांप्रदायिक खेल के हिस्से में भी तब्दील कर दिया। घाटी में बनते बिगड़ते पंडित मुस्लिम रिश्तों का इतिहास। कश्मीर के आधुनिक इतिहास में हिंदू मुस्लिम संबंधों में बनने बिगड़ने के कई मोड़ हैं। 1931 के आंदोलन और उसके बाद ग्लांसी कमीशन के मुसलमानों के पक्ष में रिपोर्ट देने, उसके खिलाफ पंडितों के नेता कश्यप बंधु द्वारा रोटी आंदोलन चलाए जाने से पैदा हुई दूरियां, 1939 में शेख अब्दुल्ला द्वारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस किए जाने और उसमें गैर मुस्लिमों के स्वागत के साथ दोनों समुदायों के कम से कम प्रगतिशील लोगों के बीच दोस्ती का एक रास्ता तो खुला ही था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में न केवल कश्यप बंधु, जियालाल किलाम और प्रेमनाथ बजाज जैसे अनेक पंडित और सरदार बुद्ध सिंह जैसे सिख नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे बल्कि कश्मीर में पहली बार नारा लगा था शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। ये नारा लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसों में लगता रहा। एक तरफ डोगरा शासन और दूसरी तरफ अंग्रेजी साम्राज्यवाद के साथ संघर्ष में जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला के साथ होना पंडितों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण था। कश्मीर में खास बात यह रही कि वामपंथी आंदोलन भी अलग से विकसित होने की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर ही विकसित हुआ, जिसमें घाटी से SL सर्राफ, डॉक्टर SN पेशिन, DP धर और जम्मू से RP सर्राफ, त्रिलोचन दत्त, गिरधारी लाल डोगरा और बलराजपुरी जैसे नेता जुड़े। इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों पर गहरा असर डाला और जो नया कश्मीर दस्तावेज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनाया वो उस दौर में एशिया के किसी भी देश के संविधान की तुलना में अधिक प्रगतिशील था। एक तरफ राज्य के लिए एक समानता आधारित सेक्युलर संविधान पेश किया गया तो दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय आर्थिक योजना बनाई गई जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था भूमि सुधार का प्रस्ताव। लंबे सामंती शासन में कुछ लोगों के हाथ में सिमट गई जमीन को आम मजदूरों किसानों में बांटने के इस प्रस्ताव का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि कई विद्वानों का ये मानना है कि शेख ने भारत के साथ आने का निर्णय इसलिए लिया था कि उन्हें यह डर था कि पंजाबी जागीरदारों के प्रभाव वाला पाकिस्तान उनके इस नया कश्मीर के सपने को कभी पूरा नहीं करेगा। भूमि सुधारों के लिए शेख की बेताबी इसी बात से समझी जा सकती है कि इन्हें लागू करने से पहले उन्होंने विधानसभा के गठन या चुनाव की प्रतीक्षा भी नहीं की थी और ये घोषणा लाल चौक की आम सभा में हुई। घाटी की किसान बहुल मुस्लिम जनता के लिए यह कदम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला था। एक झटके में वे उन जमीनों के मालिक बन गए थे जिन पर वर्षों से वो दूसरों के लिए मेहनत करते आ रहे थे। इसने नए भारतीय राज्य के प्रति कश्मीरी किसानों के मन में एक भरोसा भी पैदा किया। लेकिन जहां ये कदम एक तरफ घाटी के बहुसंख्यक मुसलमानों के लिए भारत के प्रति आकर्षण का कारण बना, वही घाटी के उन पंडितों और जम्मू के डोगराओं के लिए शेख से नफरत का सबब भी, जिनकी जमीनें चली गई थी। जम्मू में इसके विरोध की एक बानगी करण सिंह द्वारा 22 दिसंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू को भेजे गए नोट जम्मू के हालात में मिलती है। वो लिखते हैं, दुर्भाग्य से द बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट जम्मू प्रांत में संतोषजनक नहीं साबित हुआ है। राज्य की नीति किसान के पक्ष में है, चाहे वो सही हो या गलत। नतीजतन जिनके पास जमीन है वे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। असल में उनके पास कोई जमीन नहीं बची है जिससे वे अपने परिवार को खिला सकें। छोटे जागीरदार, जिनमें से अधिकतर राजपूत हैं, उन पर सबसे बुरा असर हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई बचत नहीं है और पूरी तरह से जमीन पर निर्भर हैं। मजेदार बात यह है कि उस समय करण सिंह खुद अपनी जमीनों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से मुकदमे में फंसे थे। डल झील और चश्मा शाही के किनारों पर उनकी काफी जमीन थी, जिसे राज्य सरकार ने इस अधिनियम के तहत अतिरिक्त बताकर जब्त कर लिया था, जबकि वो इसे बागान बताकर अपना हक जता रहे थे। दिल्ली और श्रीनगर के बनते बिगड़ते रिश्ते। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मीर कासिम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि दिल्ली और शेख के बीच अविश्वास भूमि सुधारों के बाद शुरू हुआ। जम्मू और दिल्ली दोनों जगह इसे हिंदू विरोधी बताया गया और पंडितों ने सीधे तो किसी आंदोलन की शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके भीतर का असंतोष बिल्कुल स्पष्ट था। भूमि सुधार के मनोवैज्ञानिक असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद को कश्मीर के समाजवाद का प्रतिनिधि घोषित करने वाले प्रेमनाथ बजाज भूमि सुधार के खिलाफ भावनात्मक विरोध दर्ज कराते हुए पंडितों की जमीन छिन जाने का दुख व्यक्त करते हैं। वो बताते हैं कि घाटी के भीतर 30% जमीनें पंडितों की थी, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि जहां आबादी केवल 4% हो, वहां 30% जमीनों पर कब्जा समाजवाद के किस सिद्धांत से न्यायसंगत था। नई दिल्ली में 2 सितंबर 2003 को कश्मीरी पंडितों पर हुई कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट की संपादक अवंती भाटी लिखती हैं, ये कार्यवाही यानी भूमि सुधार हालांकि अपने आप में न्यायसंगत और शानदार थी, लेकिन उन पंडितों के लिए एक बड़ा आघात थी जो बड़े जागीरदार थे या जिनकी आजीविका खेती थी। इस अधिनियम का अर्थ था कि जमीनें उनसे ले ली गईं और किसानों को सौंप दी गईं, जिनका बड़ा हिस्सा बहुसंख्यक समुदाय से था। इस मामले में बहुसंख्यक समुदाय के जागीरदारों ने धार्मिक भावनाओं का दोहन करके अपने किसानों से जाली समझौते किए और अपनी जमीनें बचा ली। अल्पसंख्यक समुदाय कुछ नहीं कर पाया। इस तरह 1950 के दशक में ही कश्मीरी पंडितों के दिमाग में एक अलगाव का भाव जड़ जमाने लगा। दलितों को भी लैंड रिफॉर्म से हुआ फायदा। इस आरोप में दम नहीं है कि भूमि सुधार हिंदू विरोधी थे। जम्मू कश्मीर में उस दौर में 233 मुस्लिम जागीरदार थे तो 173 गैर मुस्लिम जागीरदार, लेकिन 467 मुकर्ररी मुसलमानों के समकक्ष 1860 गैर मुस्लिम मुकर्ररी थे। एक और आंकड़ा इस पूरे परिदृश्य को समझने में मददगार हो सकता है। मीनाक्षी मोजा ने अपने शोध में बताया है कि घाटी में 100 कनाल से अधिक जमीन के मालिकों में 8408 गैर मुस्लिम थे तो 82748 मुस्लिम। अब अगर इसके साथ 100 कनाल से कम जमीन वाले किसानों का धर्मवार विभाजन देख लें तो स्थिति ठीक से समझी जा सकती है। 2,60,541 मुस्लिम किसान ऐसे थे जिनके पास 100 कनाल से कम जमीन थी, जबकि केवल 18,692 गैर मुस्लिम किसान थे जिनके पास 100 कैनाल से कम जमीन थी। घाटी में उस समय लगभग 4% गैर मुस्लिम और 96% मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखें तो हालात बहुत साफ हो जाते हैं। डोगरा राज में अपने लोगों को जिस तरह लाभ पहुंचाया गया था, उससे जम्मू क्षेत्र में जमीनों की मिल्कियत स्वाभाविक रूप से उनके पास ही थी। इन सुधारों की प्रक्रिया का हिस्सा रहे मीर कासिम अपनी जीवनी माय लाइफ एंड टाइम्स में बताते हैं कि जम्मू में इस सुधार से हरिजनों को बहुत फायदा हुआ था। ब्रेकर अपनी किताब द स्ट्रगल फॉर कश्मीर में बताते हैं कि कुल 7 लाख लाभार्थियों में से 2.5 लाख जम्मू क्षेत्र के दलित थे। अनुच्छेद 370 का विरोध भूमि सुधारों के बाद ही शुरू हुआ। भूमि सुधारों के साथ ही शेख अब्दुल्ला ने एक और महत्वपूर्ण कदम कर्ज माफी का उठाया था। इससे फायदा तो गरीब किसानों का होना था और नुकसान उन बड़े जागीरदारों का जो ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया करते थे। इन जागीरदारों में बड़ी संख्या घाटी के पंडितों और जम्मू के डोगराओं की थी। यहां ये बता देना रोचक होगा कि डोगराओं के संगठन प्रजा सभा ने 15 अगस्त 1947 को जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय का समर्थन नहीं किया, बल्कि वे हरि सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य के पक्ष में थे और जम्मू में डोगरा राजवंश का झंडा ही फहराया गया था। लेकिन कबायली हमले के बाद जब ये तय हो गया कि स्वतंत्र राज्य संभव नहीं है तो वे भारत के पक्ष में आए। पटेल भी जमीनों के बदले मुआवजा देने के पक्ष में थे, लेकिन शेख ने कोई मुआवजा देना स्वीकार नहीं किया तो प्रजासभा ने अनुच्छेद 370 का तीखा विरोध शुरू कर दिया। इसमें उसे साथ मिला जनसंघ का। गांधी जी की हत्या के बाद अलग थलग पड़ चुके हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथ के लिए कश्मीर का ये मसला खुद को फिर से स्थापित करने के लिए बेहद मुफीद था और जमीन के मसले को हिंदू बनाम मुसलमान का रंग दे दिया गया। फिर आया एक देश में दो विधान नहीं चलेगा का नारा। नतीजा ये हुआ कि भारत की संविधान सभा में अनुच्छेद 370 पर खामोश रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अब इस पर सवाल उठाना शुरू किया और इसे देश की अखंडता से जोड़ते हुए एक देश में दो विधान नहीं चलेगा का नारा दिया। मजेदार यह है कि उनके सहयोगी और जनसंघ के संस्थापक बलराज मधोक शेख अब्दुल्ला को कम्युनल नहीं ठहराते बल्कि कम्युनिस्ट या कम्युनिस्टों के प्रभाव में काम करने वाला बताते हैं। वो प्रजा परिषद के आंदोलन को उचित ठहराते हुए भूमि सुधारों का नाम नहीं लेते बल्कि नया कश्मीर दस्तावेज के अंधाधुंध लागू करने को डोगराओं और हिंदुओं के खिलाफ की गई कार्यवाही बताते हैं। जाहिर है कि इस दौर में नया कश्मीर दस्तावेज से सिर्फ दो चीजें ही लागू की गई थी, भूमि सुधार और कर्ज माफी। ठीक इसी समय करण सिंह भी नेहरू से शेख की शिकायत करते हुए ऐसे ही आरोप लगा रहे थे और प्रजा परिषद की वकालत कर रहे थे। जम्मू में शेख के खिलाफ एक तीखा अभियान चलाया गया जिसने हिंसक मोड़ ले लिया। इस आंदोलन में जम्मू और कश्मीर के झंडे जलाए जाने से लेकर सांप्रदायिक हिंसा तक की घटनाएं हुई और अंततः इसे एक ऐसे आंदोलन में बदल दिया गया जिसने एक तरफ जम्मू और घाटी के बीच दूरियां पैदा की तो दूसरी तरफ घाटी में भूस्वामी पंडितों और खेतीहर मुसलमानों के बीच खाई चौड़ी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रीनगर में गिरफ्तारी के दौरान दिल के दौरे से मृत्यु के बाद हालात और बिगड़ गए। शेख पर उनकी हत्या का आरोप लगाया गया और सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में फैल गया। भूमि सुधार से पटेल की नाखुशी और शेख की गिरफ्तारी। नेहरू के शासनकाल में भारत के विदेश सचिव रहे वाई एस गुंडेविया बताते हैं कि जहां कश्मीर के भूमि सुधारों से नेहरू खुश थे वहीं पटेल नाराज। शेख को लेकर उनकी नाराजगी और हरि सिंह से सहानुभूति बहुत स्पष्ट थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त इंटेलिजेंस विभाग में सहायक निदेशक B.N. मलिक की किताब माय एयर्स विद नेहरू कश्मीर में मिलता है। मलिक को अपने प्रभाव में लेने के बाद पटेल ने लगातार शेख के खिलाफ खुफिया रिपोर्टें बनवाई तो उधर करण सिंह भी लगातार अपने पत्रों में नेहरू के कान भर रहे थे। हालांकि पटेल 1950 में ही दुनिया ए फानी को विदा कह गए, लेकिन कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी राजनीति की जड़ें गहरी हो चुकी थी। शेख और दिल्ली के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार शेख के मंत्रिमंडल में शामिल D.P. धर की सहायता से शेख की गिरफ्तारी की कहानी लिखी गई और मुखर्जी की मृत्यु के दो महीने के भीतर 8 अगस्त 1953 को शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने घाटी में जबरदस्त तूफान पैदा कर दिया। घाटी में जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और पुलिस फायरिंग में अनेक लोगों ने जानें भी गंवाई। इसे घाटी के लोगों ने पंडित नेहरू के विश्वासघात की तरह देखा और उस दौर में बने प्लेबिसाइट फ्रंट के जरिए जो अलगाववादी भावनाएं पनपी वे समय के साथ मजबूत होती गईं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जम्मू में जनसंघ के झंडे तले डोगराओं और घाटी में पंडितों के एक बड़े वर्ग ने जश्न मनाया। इससे दोनों समुदायों के बीच दरार पड़ गई। इस तरह जिस भूमि सुधार की संभावना ने शेख अब्दुल्ला और घाटी की गरीब आबादी में भारत के प्रति आकर्षण पैदा किया था, सांप्रदायिक खेल का हिस्सा बनाकर कश्मीर में अलगाववाद की जड़ बना दिया गया। एक तरफ घाटी और जम्मू के बीच, दूसरी तरफ घाटी के भीतर पंडितों और मुस्लिम आबादी के बीच भूमि सुधारों से शुरू हुआ ये आपसी अविश्वास नौकरियों के बंटवारे जैसे सवालों को लेकर लगातार आगे भी गहरा होता गया। घाटी में अल्पसंख्यक और देश के बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा पंडितों ने अपनी स्वाभाविक पक्षधरता दिल्ली के साथ चुनी तो मुस्लिम स्थानीयता और स्वायत्तता को लेकर और अधिक मुखर हुए, जिसे लगातार चुनाव में हस्तक्षेप और मनमर्जी के कठपुतली मुख्यमंत्री बनाने की केंद्रीय सत्ता की हरकतों ने और बढ़ावा दिया। 90 के दशक का आतंकवाद और उसके चलते कश्मीरी पंडितों के पलायन की जड़ें कश्मीर के आधुनिक इतिहास की ऐसी ही अनेक परिघटनाओं में दबी हैं, जिन्हें अक्सर सांप्रदायिक सवालों के कुहासे में छिपाने की कोशिशें होती हैं।